What is the Christian's relationship to the law?
एक मसीह का व्यवस्था से क्या संबंध है?
In order to answer that question, we must understand several things.
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कई बातों को समझने की आवश्यकता है.
What is the definition of the law?
व्यवस्था की परिभाषा क्या है?
What is the purpose of the law?
व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?
What is the sinner's relationship to the law?
एक पापी का व्यवस्था से संबंध क्या है?
What does it mean to be under the law?
व्यवस्था के अधीन होने का मतलब क्या है?
What is Christ's relationship to the law?
और मसीह का व्यवस्था से क्या संबंध है?
How did Christ fulfill the law?
और मसीह ने कैसे व्यवस्था को संपूर्ण किया?
Then we can answer the question, must the Christian obey the law?
और तभी हम उत्तर दे सकते हैं इस बात प्रश्न का कि क्या किसी मसीह को व्यवस्था का पालन करना है कि नहीं करना है.
What is the definition of the law?
व्यवस्था की परिभाषा क्या है?
Different context, it had different meaning.
और अलग अलग संदर्भों में इसका अलग अलग मतलब होता है.
Sometimes it meant the first five books of the Bible.
और कभी कभी इसका मतलब होता है वचन की, बाइबल की पहली पांच पुस्तकें.
Sometimes it meant the whole Old Testament.
कभी कभी व्यवस्था का अर्थ होता है संपूर्ण पुराना नियम.
Sometimes it meant the ceremonial law.
कभी कभी व्यवस्था का मतलब होता है रीति विधियों के अनुसार के नियम.
Sometimes it meant the Ten Commandments.
कभी कभी व्यवस्था का मतलब होता है दस आज्ञाएं.
In different context, different meaning.
अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होता है.
If you're going to understand the relationship of the Christian and the law, you must understand these different meaning.
अगर आप एक मसीह का व्यवस्था से संबंध को समझना चाहते हैं तो आपको इन विभिन्न अर्थों को समझना पड़ेगा आपको.
What is the purpose of the law?
एक व्यवस्था का अर्थ क्या है? उद्देश्य क्या है?
Restrain evil,
दुष्टता को नियंत्रित रखना.
To reveal man's sin,
मनुष्य के पापों को सामने लाना.
Condemn man's sin,
और मनुष्य के पापों को दोषी ठहराना.
And the important question is this, does the law have any purpose today for the believer?
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वो ये है कि क्या आज व्यवस्था का मसीहों से कुछ लेना देना है कि नहीं है?
Now in the Garden of Eden, God gave Adam a law.
और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को एक व्यवस्था दी था, एक नियम दिया था.
Don't eat the tree.
वृक्ष में से मत खाना.
Then he gave two great laws.
और फिर उसके बाद उसने दो महान व्यवस्था दी.
Love God with all your heart, love your neighbor as yourself.
परमेश्वर को अपने हृदय से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो.
He gave 10 laws.
और फिर उसने 10 आज्ञाएं दी, 10 व्यवस्था दी.
Relationship to God.
और पहले चार परमेश्वर से संबंध के बारे में थे.
6 in relationship to man.
और 6 मनुष्य से संबंध के बारे में थे.
Now some laws are temporary, some laws are permanent.
और कुछ व्यवस्था या कुछ नियम स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं.
Some laws have been fulfilled and finished by Christ.
और कुछ व्यवस्था, कुछ नियम है जो मसीह के द्वारा संपूर्ण कर दिए गए, पूरे कर दिए, खत्म हो गए.
Some laws are permanent and continue.
और कुछ व्यवस्था नियम ऐसे हैं जो स्थायी हैं और अभी भी चलते जा रहे निरंतर.
And we must understand the difference.
और इसलिए हमें उनमें फर्क को समझना है, भिन्नता को.
How did Christ fulfill the law?
कैसे मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया?
He did four things.
उसने चार चीजें की.
He obeyed its righteous demands.
उसने उसकी धार्मिक मांगों को पूरा किया.
He suffered its curse, its penalty.
उसने उसके आपको उसके दंड को सह लिया.
He interpreted its true meaning.
और उसने उसके सच्चे अर्थ को बताया.
That is the Sermon on the Mount.
ये है पहाड़ी उपदेश.
He said, "You have heard it that men say this, but I say this."
उसने ये कहा कि तुमने सुना है कि मनुष्य लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ.
They were just applying the law outwardly.
और ये लोग तो जो है नियमों को केवल बाहरी तौर से लागू कर रहे
हैं. Paul, Jesus said the true meaning of the law is spiritual and inward.
लेकिन यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था का असली अर्थ भीतरी है, अंदर से है.
So he fulfilled its righteousness.
उसने उसकी धार्मिकता को परिपूर्ण किया.
He suffered its curse.
उसने उसके श्राप को सह लिया.
He restored its true meaning.
और उसके जो वास्तविक अर्थ है, असली अर्थ है, उसको उसने पुनः स्थापित किया.
And he established its true purpose.
और उसके असली उद्देश्य को स्थापित किया.
Look in the book of Matthew.
मत्ती की पुस्तक में देख लीजिए.
And chapter 5.
और पांचवें अध्याय में.
Christ's fulfillment of the law.
और मसीह के व्यवस्था की परिपूर्णता.
Verse 17.
और पांचवा पद, 17 पद.
Do not think that I came to abolish the law and the prophets. I didn't come to abolish, but to fulfill it. Until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke will be removed from the law. It is permanent, it is eternal. Verse 19. Therefore, anyone that cancels one of these least commandments teaches others be least in the kingdom. But whoever keeps and teaches, he will be called greatest in the kingdom. Now notice verse 20. He says your righteousness must be greater than the scribes and the Pharisees. They had outward morality, but they had inward sin. What does Jesus say? True righteousness is within. He said, you Pharisees are like whitewashed tombs. Outwardly you're clean. Inwardly you're full of dead men's bones. Jesus said, you must have greater righteousness than the Pharisees. It was outward righteousness. God requires inward righteousness. Christ came to truly interpret the law. He was the true Moses. He delivered us from bondage. He took us not to Sinai, but he took us to Calvary. And he gave us the proper interpretation of the law. So what is the relationship of the law and the gospel? Look in the book of Galatians. Galatians chapter 3. Look in Galatians 3. Verse 19. What is the purpose of the law? It was added because of transgressions. Verse 21. Is the law contrary to the promises of God? No, it is not. If the law had been given that could give life, then righteousness would have come from the law. But verse 22, the scripture has shut up everyone under sin. Verse 23, until faith came, we were kept under the law. So what is the purpose of the law? Verse 24, it is our tutor, our teacher, to lead us to Christ. What is the relationship of the law and the gospel? The law is to lead us to the gospel. How does it do that? By showing us God's holy standard. By revealing our own sin. And by convicting us of sin. And condemning our sin and showing us we cannot save ourselves. And it points us or leads us to Christ. So the law prepares the way for the gospel by showing God's righteous standard, by showing us our sin,
हमारे खुद के पापों को दिखाने के
लिए we cannot save ourselves
और व्यवस्था हमको ये दिखाता है कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते
and by leading us to Christ
और फिर व्यवस्था हमको मसीह की ओर लेकर के जाता है
now listen carefully
और अब ध्यान से इस बात को
the bible says we are free from the law
और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं
we are no longer under the law
हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं
he is talking about our justification
तो जब बाइबल ऐसी बात करती है तब वो बात करे हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने के बारे में बात करे
Romans chapter 3
रोमियों का तीसरा अध्याय
look at verse 19 and 20
उसका 19 अध्याय देख लीजिए तीसरा अध्याय उसका 19 पद रोमियों 3:19 पद
what verse 9 whatever the law says it speaks to those that are under the law
और अब जो कुछ भी व्यवस्था कहते हैं उनसे कहते हैं जो व्यवस्था के अधीन है
What is the result?
और उसका परिणाम क्या होता है
Every mouth will be shut.
तो सारे मुंह बंद किया जाएगा
And all the world guilty to God.
और संसार समस्त संसार परमेश्वर को लेखा देने वाला
Verse 20.
20 पद
But by works of the law no flesh will be justified in his sight.
व्यवस्था के कर्मों के द्वारा कोई भी प्राणी उसकी दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरेगा
The law cannot save.
व्यवस्था हमें बचा नहीं सकता
It can only condemn.
वो हमें केवल दोषी ठहरा सकता
The law was not our friend.
व्यवस्था
It was our enemy.
वो हमारा दुश्मन था.
In our salvation, we cannot obey the law.
हम अपने उद्धार में व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते.
The law was against us.
व्यवस्था तो हमारे विरोध में था.
It condemned us.
उसने हमें दोषी ठहराया.
It judged us.
उसने हमें न्याय किया.
It pronounced condemnation upon us.
उसने हमारे ऊपर दंड ठहरा दिया.
But now we are free from the law.
और अब हम व्यवस्था से छूट गए.
There is no condemnation for those in Christ Jesus.
और अब वे जो मसीह यीशु में हैं उनमें कोई दंड की आज्ञा
नहीं है. We're not under the law.
हम व्यवस्था के अधीन नहीं है.
We're not under the curse of the law.
हम व्यवस्था के श्राप के अधीन नहीं है.
We're not under the righteous requirements of the law.
अब हम व्यवस्था के धर्मी मांगों के अधीन नहीं है.
In our salvation we are free from the law.
हमारे उद्धार के संबंध में अब हम व्यवस्था से मुक्त हो गए
जस्टिफिकेशन वी आर फ्री फ्रॉम द लॉ
हमारे धर्मी ठहराए दिए जाने के संबंध में अब हम व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए हैं
वी कुड नॉट ओबे बट ही ओबे
क्योंकि हम तो मान नहीं सकते थे लेकिन पालन नहीं कर सकते लेकिन उसने पालन किया हमारे बदले में
वी कुड नॉट पे द पेनल्टी ही पेड द पेनल्टी
हम तो कीमत नहीं चुका सकते थे लेकिन उसने दंड को चुका दिया हमारे बदले
सो वी आर फ्री फ्रॉम द लॉ
तो इस तरह से अब तो हम व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए
लॉ वर अंडर ग्रेस
अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है किंतु अब हम अनुग्रह के अधीन है
Now here's our question.
लेकिन यहाँ पे मेरा प्रश्न है आपसे.
Does that mean the Christian is free now to do whatever he wants?
क्या इसका ये मतलब है कि एक मसीही मुक्त है स्वतंत्र है जो चाहे वो कर ले अब वो
Does that mean the Christian has no law?
क्या इसका ये मतलब है अब मसीही के जीवन में व्यवस्था को कोई स्थान ही नहीं है
Does that mean the Christian is just led by the Spirit and he has no law?
क्या इसका ये अर्थ है कि अब एक मसीही आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है इसलिए उसके जीवन में व्यवस्था है ही नहीं?
Paul says this.
पौलुस तो ये कहता है.
Galatians chapter 5.
गलातियों के पांचवें अध्याय.
If you are led by the Spirit, you are not under the law.
कि अगर तुम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो.
What is his meaning?
उसका मतलब क्या हुआ जो
If you are led by the Spirit, you've been born again by the Spirit.
वो ये कह कि अगर तुम आत्मा द्वारा चलाया जाते हो तो तुम्हारा आत्मा द्वारा नया जन्म
हुआ है have been delivered from the law
तुम व्यवस्था से छुड़ा दिए गए हो
its requirements
उसके आवश्यकताओं से
its curse
उसके शापों से
its condemnation
उसके दंडित रह दिए से
we are free from the law
हम अब व्यवस्था से मुक्त हो गए
in our justification and sanctification
हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने के मामले में और पवित्रीकरण के मामले में
the lost man is under the law
जो खोया हुआ व्यक्ति है वो व्यवस्था के अधीन है
Here's the law of God.
ये एक व्यक्ति है और वो खोया हुआ है उसके ऊपर परमेश्वर का नियम है व्यवस्था है
When a baby is born, he's born under the law.
और जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप व्यवस्था के अधीन पैदा होता है
And the law requires perfect obedience.
और व्यवस्था ये मांग करती है कि सिद्ध आज्ञाकारिता
We could not obey the law.
लेकिन हम लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे
We broke the law.
हमने व्यवस्था को तोड़ा
We could not fulfill its righteousness.
हम उसकी धार्मिकता को पूरी नहीं कर सकते थे
And we were under its condemnation.
और हम उसके दंडी ठहरा दिए के नीचे थे
Cursed is the man that doesn't abide by all the things written in the book of the law.
वो व्यक्ति शापित है जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई व्यवस्था में लिखी हुई सारी बातों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाता है.
But when a person becomes a Christian,
लेकिन जब एक व्यक्ति मसीही बन जाता है,
this is an American Christian.
ये अमेरिकी क्रिश्चियन है.
He's a little fatter.
ये थोड़ा मोटा भी है.
In the new covenant,
नए वाचा के अंदर,
Ezekiel 36,
यज़ेकेल 36 अध्याय,
Jeremiah 33,
यरमिया 33 अध्याय.
What is the promise of the new covenant?
नए वाचा की प्रतिज्ञा क्या है?
Let's look at Ezekiel 36.
आइए हम लोग यज़ेकेल उसके 36 अध्याय को देख ले.
We're talking about the believer's relationship to the law.
हम लोग यहाँ पे विश्वासी का व्यवस्था से क्या संबंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं. यहेजकेल उसके 36 अध्याय. यहेजकेल 36 अध्याय.
Is that chapter 36? Yeah. Yes.
36.
26. Let's start at 25.
यहेजकेल 36 उसके 25वें पद से हम लोग आरंभ करेंगे.
I will sprinkle clean water on you and you will be clean.
मैं तुम्हारे पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओ.
Verse 26.
उसका 26 पद.
I will give you a new heart and put a new spirit within you.
मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा.
And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
और मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा.
And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes.
और मैं अपनी आत्मा तुम पे डालूंगा, तुम्हें अपनी विधियों पे चलाऊंगा.
Not the verse we want. Where's the other one? I'll write the law on the heart.
That's in Jeremiah 31.
Yeah,
verse 33.
There you go. Jeremiah 31.
Yermia उसका 31वां अध्याय.
33. Here's Jeremiah prophesying concerning the new covenant.
और यहाँ पे यर्मिया नए वाचा के बारे में एक प्रतिज्ञा कर रहा है.
This is the covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord.
और यहोवा यूँ कहता है कि मैं इन दिनों के बाद इज़राइल के
घराने से ये. I will put my law within them and on their heart I will write it.
मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पे लिखूंगा.
And I will be their God and they will be my people.
और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे.
They will not teach anyone, every man his brother, saying, "Know the Lord." They'll all know me.
और तब उन्हें अपने पड़ोसी, अपने भाई को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे.
In the new covenant,
नई प्रतिज्ञा,
in the life of the believer,
एक विश्वासी के जीवन में,
where is the law of God?
परमेश्वर की व्यवस्था कहाँ है?
What is the promise of the new covenant?
नई वाचा की प्रतिज्ञा क्या है?
I will forgive their sin.
मैं तुम्हारे उनके पापों को भूल
जाऊंगा. I will cleanse them from their iniquity.
मैं उनको उनके पापों से शुद्ध कर दूंगा.
I will give them a new heart.
मैं उनको एक नया हृदय दूंगा.
I will put my spirit within them.
मैं अपनी आत्मा उनके भीतर डालूंगा.
And I will write my law upon their heart.
मैं अपने आज्ञा उनके हृदयों पर डालूंगा, अपनी व्यवस्था.
And they will all know me from the smallest to the greatest.
और छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मुझे जानेंगे.
A lost man is under the law.
एक खोया हुआ व्यक्ति व्यवस्था के अधीन होता है.
It condemns him.
और वो उसको दोषी ठहराता रहता है.
A saved man.
और एक जो बचा हुआ व्यक्ति
is not under the law.
वो अब व्यवस्था के अधीन नहीं है.
He's under grace.
वो अनुग्रह के अधीन है.
And God writes the law on his heart.
और परमेश्वर अपने व्यवस्था को उसके हृदय पे लिख देता है.
It no longer condemns him, it guides him.
और अब व्यवस्था उसको दोषी नहीं ठहराती, बल्कि उसको उसको अगुवाई करती है.
It is not his enemy, it is his friend.
अब व्यवस्था उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके दोस्त बन गया.
It is not against him, it is for him.
और व्यवस्था उसके विरोध नहीं, लेकिन व्यवस्था उसके साथ में है.
The law leads us to the gospel.
और व्यवस्था जो है हमें सुसमाचार की ओर लेकर जाता
है. And the gospel writes the law upon our heart.
और सुसमाचार जो हमारे हृदय पे उसकी व्यवस्था को लिखता है.
And we obey God from a new heart.
और हम परमेश्वर को एक नए हृदय में से सुनते हैं.
Not to earn our salvation.
अपना उद्धार कमाने के लिए नहीं.
But because we have been saved.
लेकिन हम लोग बचा लिए गए इसलिए.
Do you understand the difference?
क्या आप इसमें फर्क समझ रहे हैं?
So when Paul says you are no longer under the law,
तो जब पौलुस कहता है कि अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो,
you are free from the law,
तुम व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए हो.
What is he talking about?
तो किस चीज की बात कर रहा
है? He's talking about our salvation.
तो वो हमारे उद्धार के बारे में बात कर
रहा है. He's talking about our justification.
हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने के बारे में.
We are free from the law.
हम व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए.
Sometimes Paul speaks negatively about the law.
कभी-कभी पौलुस जो है व्यवस्था के बारे में नकारात्मक रूप में बात करता है.
And he's talking about this.
तब वो उस व्यवस्था के बारे में बात कर
रहा है. It cannot save you.
क्योंकि वो व्यवस्था हमें बचा नहीं सकती.
Cannot justify you.
वो हमको धर्मी नहीं ठहरा सकती.
It can only condemn you.
वो व्यवस्था तो हमें केवल दोषी ही ठहरा सकती है.
Sometimes he speaks positively about the law.
लेकिन कभी-कभी पौलुस जो है व्यवस्था के बारे में सकारात्मक रूप में बात करता है.
He's talking about our sanctification.
तब वो बात कर रहा है हमारे पवित्रीकरण शुद्धिकरण के बारे में.
It is our friend.
और वो हमारा मित्र है.
It doesn't condemn us.
अब वो व्यवस्था हमारा हमें दोषी नहीं ठहराता है. लेकिन हमें निर्देश देता है हमारा व्यवस्था.
You see the difference.
क्या आप दोनों व्यवस्था में फर्क देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं?
The law was our enemy.
पहले तो व्यवस्था हमारा दुश्मन था.
Now it is our friend.
लेकिन अब वो हमारा मित्र बन गया.
The law condemned us.
पहले तो व्यवस्था हमें दोषी ठहराता
था. Now it guides us.
लेकिन अब वो हमें दिशा दिखाता है.
We were under the law.
पहले हम व्यवस्था के अधीन थे.
Now we're under grace.
लेकिन अब तो हम अनुग्रह के भीतर हैं.
So should the Christian obey the law?
तो क्या विश्वासी को व्यवस्था पालन करना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्या विश्वासी को व्यवस्था का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
Should the Christian obey the law for his salvation?
क्या एक विश्वासी को व्यवस्था का पालन अपने उद्धार के लिए करना चाहिए?
Should the Christian obey the law in his sanctification?
क्या एक विश्वासी को व्यवस्था का पालन अपने पवित्रीकरण के लिए करना चाहिए?
It was our enemy.
पहले वो हमारा दुश्मन था.
Now it is our friend.
लेकिन अब हमारा मित्र बन गया.
It did condemn us.
पहले तो हमें दोषी ठहराता था.
Now it guides us.
लेकिन अब हमें वो दिशा दिखाता है.
God has not left us alone.
परमेश्वर ने हमें अकेले नहीं छोड़ दिया.
Thy word is a lamp unto my path and a light to my feet.
आपका वचन मेरे मार्ग के लिए और मेरे पैरों के लिए ज्योति है.
Now listen carefully.
अब ध्यान से इस बात.
The law is in another place also.
और व्यवस्था एक और जगह पे भी है.
It was over our head.
पहले तो हमारे सर के ऊपर था वो.
Now it is in our heart.
अब वो हमारे हृदय में है.
And where else is it?
और कहाँ पे है व्यवस्था?
Under our feet.
अब हमारे पैरों के नीचे.
It is the pathway of holiness.
क्योंकि अब ये हमारे पवित्रता के लिए एक मार्ग बन गया है.
It was over our head, now it is under our feet.
पहले तो हमारे सर के ऊपर था, अब हमारे पैरों के नीचे हो गया.
It did condemn us, now it guides us.
पहले वो हमको दोषी ठहराता था, अब वो हमें दिशा दिखाता है.
It was against us, now it is for us.
पहले व्यवस्था हमारे विरोध में थी, अब व्यवस्था हमारे साथ में है.
Psalm 119 verse 32.
भजन 119 और उसका 32 पद.
Look at that verse.
उस पद को देख लीजिए. भजन 119 उसका 32 पद.
That's it. Look at verse 32.
भजन 119 उसका 32 पद को पढ़ लीजिए, देख लीजिए.
Have you got a good translation here? I will run the way of your commandments, for you will enlarge my heart.
मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा क्योंकि तू मेरा साहस बढ़ाएगा.
You've got three things here.
यहाँ पे तीन बातें हैं यहाँ पे.
Look at the verse.
इस बात को देख लीजिए आप.
What three things do you have here?
कौन सी तीन बातें हैं यहाँ पे?
Number one.
पहली बात.
Human effort.
यहाँ पे है मनुष्यों का प्रयास.
I will run.
मैं दौड़ूंगा.
Number two.
दूसरी बात.
Divine power.
परमेश्वर की सामर्थ.
You will enlarge my heart.
क्योंकि तू मेरा साहस बढ़ाएगा.
Number three.
तीसरी बात.
An objective standard.
और एक सामने हमारे सामने एक स्तर है.
I will run the way of your commandments.
एक निश्चित स्तर. मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा.
Human responsibility.
मानवीय जिम्मेदारी.
Divine power.
परमेश्वर की सामर्थ.
Objective commandments.
एक निश्चित आज्ञाएं.
Do you see that?
क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे इस चीज को?
Thy word is a lamp to my feet and a light to my path.
आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है.
And if you read Psalm 19, he says it again and again and again.
और अगर आप भजन 119 को पढ़ेंगे तो ये बात को बार बार कहता है ये इस बात को.
He loves the law of God.
वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है.
He memorizes the law of God.
वो परमेश्वर की व्यवस्था को याद करता है.
He obeys the law of God.
वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है.
Follows the law of God.
वो परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे पीछे चलता है.
It directs his path.
वो उसके रास्ते को दिखाता है.
It tells him where to go.
वो उसको बताता है कहाँ जाना है.
It guides his feet.
वो उसके पैरों को मार्ग दिखाता
है. It's not over his head.
अब वो उसके सर के ऊपर नहीं है.
He's not under law, he's under grace.
अब वो व्यवस्था के आदि नहीं किंतु अनुग्रह के आदि है.
It doesn't condemn him, it blesses him.
अब वो उसको दोषी नहीं ठहराता है लेकिन उसको आशीष देता है.
Before he hated God's law.
पहले तो वो परमेश्वर की व्यवस्था से घृणा करता था.
Because it was against him.
क्योंकि वो उसके विरोध में था.
And he rebelled against it.
और उसके विरोध में से विद्रोह भी किया.
God gives him a new heart.
लेकिन परमेश्वर उसको एक नया हृदय दिया.
And the new covenant, he writes the law on the heart.
और नए वचन के अंतर्गत उसके हृदय में अपनी व्यवस्था को उसने लिख दिया.
And he puts it under our feet.
और उसको हमारे उनके पैरों के नीचे रख दिया.
So I ask you this question.
तो मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Is the Christian obligated to obey the law of God?
क्या एक मसीही को परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने की आवश्यकता है कि नहीं है?
Yes and no.
वो कह रहे हैं हां और नहीं भी. हां और नहीं.
In his salvation, he is not obligated to obey the law of God.
तो अपने उद्धार के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अब वो परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए उसके लिए बाधित नहीं है.
He cannot obey it.
क्योंकि वो उसका पालन कर ही नहीं सकता.
Cannot fulfill it.
क्योंकि उसको वो संपूरा कर ही नहीं सकता.
So in his justification, salvation, he cannot obey the law.
तो अपने धर्मी ठहराए जाने के लिए, अपने उद्धार के लिए वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर ही नहीं सकता.
But in his Christian life and sanctification, he will love to obey the law.
लेकिन अपने मसीही जीवन में, अपने पवित्रीकरण, शुद्धिकरण में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने में उसको उसको आनंद आएगा. वो करेगा ही, उसको करना है.
So if someone asks you this question,
तो इसलिए अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले,
do I have to obey the law of God?
क्या हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना है?
What question should you ask him?
तो आपको उससे क्या प्रश्न पूछना चाहिए पलट करके?
In what sense or meaning do you mean obey?
तो आपको उसे पलट करके पूछना चाहिए किस मायने में तुम कह रहे हो कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना है?
Are you talking about your salvation?
क्या तुम अपने उद्धार के बारे में बात कर रहे हो?
Are you talking about your sanctification?
या तुम अपने पवित्र शुद्धिकरण के बारे में बात कर रहे हो?
If you're talking about your salvation, the answer is no.
अगर तुम अपने उद्धार के बारे में बात करें, मुक्ति के बारे में बात करें, तो इसका उत्तर है नहीं.
If you're talking about your sanctification, the answer is yes.
लेकिन अगर तुम अपने पवित्रीकरण शुद्धिकरण के बारे में बात करें तो इसका उत्तर है हाँ.
So you must understand their meaning and their motive if they ask you.
तो जब लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आपको उनके प्रश्नों का अर्थ और उनके उद्देश्य को समझना है.
God gave Adam a commandment.
परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी.
For his blessing.
उसके स्वयं की आशीषों के लिए.
God gave Israel commandments.
परमेश्वर ने इज़राइल को आज्ञाएं दी.
For their blessing.
उनके स्वयं की आशीषों के लिए.
God gives his own children commandments.
परमेश्वर अपने स्वयं के बच्चों को आज्ञाएं देता है.
For their blessing.
उनके स्वयं की आशीषों के लिए.
So is the Christian under law?
क्या एक मसीही व्यवस्था के अधीन है?
No.
नहीं.
Regarding his salvation, no.
हमारे उद्धार के संबंध में हम उसके अधीन नहीं हैं.
God has written it on his heart and put it under his feet.
क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय में लिख दिया है व्यवस्था को और हमारे पैरों के तले डाल दिया है.
By the new birth and according to his love.
और नए जन्म के द्वारा और अपने प्रेम में होकर के उसने ऐसा कर दिया हमारे साथ.
You have a little child.
अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है.
And you send him to the store to buy some food.
और अगर आप उसको मान लीजिए किसी दुकान भेज देते कुछ खाना, कुछ खाने की चीज खरीदने के लिए.
You tell him, now you just go out there and just go any way you want to go.
तो क्या आप उससे ऐसा कहते हैं कि तुम बाहर जाओ और कहीं भी चले जाओ जहां तुम चाहते हो जाने के लिए.
You just follow your own heart.
तुम अपने तुम्हारा दिल जो तुमसे कहे तुम उसी के अनुसार.
However you feel, you just go that way.
और जिस दिशा में जाने तुम्हारा मन हो उसी दिशा में तुम जाओ. क्या आप उससे ऐसा कहते हैं?
Is that the true love of a parent?
क्या एक पिता का माता पिता का ये सच्चा प्रेम इसी तरह से दर्शाया जाएगा?
What does the parent say?
नहीं, लेकिन माता पिता क्या कहते हैं?
When you go to the store,
तुम उस दुकान में जाओगे.
Go down four stops.
तुम जाना चार बार इस रास्ते से होकर के जाना.
Then turn left.
और फिर उसके बाद मोड़ लेना.
Go three stops.
और फिर उसके बाद तीन और कदम आगे जाना.
Right there on the right.
और फिर वहीं पे दाएं हाथ पे.
Don't go to the left or to the right.
और वहां से तुम बाएं जाना दाएं मत जाना.
Stay right on the path.
और उस रास्ते में सीधे जाना तुम.
God loves us.
परमेश्वर हमसे प्रेम करता
है. He cares for us.
वो हमारी चिंता करता है.
He wants to protect us.
वो हमें सुरक्षित रखना चाहता
है. And he has shown us the way to go.
और उसने हमें वो दिखाया कौन से रास्ते पे हमें जाना है.
He doesn't leave us to follow our own feeling.
वो हमें छोड़ नहीं देता है कि हम अपनी स्वयं की भावनाओं के पीछे चलें.
So when we talk about the Christian's relationship to the, you must understand this difference.
तो इसलिए जब भी हम मसीह की व्यवस्था से संबंध के बारे में बात करते हैं, तो हमें इस बात को, इस फर्क को, भिन्नता को समझने की आवश्यकता है.
Any question?
कोई प्रश्न है आपको इसके बारे में? किसी को कोई प्रश्न इसके बारे में?
This is very important.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना.
You say, well, of course we know that.
तो आप हो सकते हैं, हम तो जानते हैं इस बात को.
But many people mix these two.
लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, ज्यादातर लोग इन दो चीजों को मिला देते हैं.
And they go to two extremes.
और फिर वो लोग दो चरम स्थितियों पे चले आते हैं.
Legalism or antinomianism.
या तो वो लोग कानूनवाद में चले आते हैं या तो गैर कानूनवाद में चले आते हैं.
Our time is almost over.
और हमारा समय जो है पूरा एक तरह से पूरा हो गया है.
We don't have time to develop this any further.
और हमारे पास और समय नहीं कि हम इसको आगे बढ़ा सके.
But I want to spend some time tomorrow talking about the characteristics of legalism and the characteristics of antinomianism.
और कल फिर हम कुछ समय बात करेंगे इसके बारे में, बात करते हुए कि व्यवस्थावाद या कानूनवाद के क्या चरित्र होते हैं और गैर व्यवस्थावाद गैर कानूनवाद के क्या चरित्र होते हैं.
So you can recognize the difference.
तो फिर आप इन दोनों में फर्क समझ सकते हैं.
And you can guard your own heart.
और फिर आप अपने हृदय को सुरक्षित कर सकते हैं.
And when you preach to others.
और फिर जब आप दूसरों से प्रचार करें, दूसरों को,
you will be able to tell them correctly.
और फिर आप उनको सही तरह से बता पाएंगे.
So let's look back again at our list of questions.
तो फिर वापस आइए हम अपने प्रश्नों के सूची पे फिर से देखें.
We've answered some of these questions.
हमने कुछ प्रश्नों को उत्तर दे दिया है.
Where are my questions?
Like my... We have time if you want to
take. Yes, well, no, it's going to take too long, brother. What was the first question?
सबसे पहला प्रश्न क्या था हमने जो पूछा था?
Do you understand what is the law?
क्या आप समझते हैं कि व्यवस्था क्या है?
It may have different meanings in different contexts.
अलग अलग संदर्भों में व्यवस्था का अलग अलग मतलब होता है.
But usually when Paul and the apostles are using the word law, they're talking about the old covenant or the Ten Commandments.
लेकिन अक्सर जब पॉलस या दूसरे नए नियम के लेखक लोग व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसका उनका इससे मतलब है दस आज्ञाओं से या पुरानी व्यवस्था से.
They talk about the ceremonial law or the moral law.
वो बात करते हैं तो रीति विधियों के व्यवस्था के बारे में, नियमों के बारे में, या तो वो सामाजिक नियमों के बारे में बात करते हैं.
What's the second question?
नैतिक नियमों के बारे में. दूसरा प्रश्न क्या था?
What's the purpose of the law?
व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?
The law has several purposes.
व्यवस्था के कई उद्देश्य हैं.
It has a general use to restrain sin in society.
तो एक सामान्य इस्तेमाल तो उसका ये है कि समाज में पाप को अंकुश लगा के रखने का इस्तेमाल होता है उसका.
Now men sometimes don't know why they should not murder, but because God has restrained them by His law in their heart.
तो कई बार मनुष्य को मालूम नहीं होता है कि क्यों करके उन्हें एक दूसरे की हत्या नहीं करनी है, लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदय में उनको अंकुश लगा करके रखा
है. What's another purpose of the law?
और व्यवस्था का एक और उद्देश्य है.
To reveal sin.
ना सिर्फ अंकुश करना, लेकिन पाप को प्रदर्शित करना.
Condemn sin.
और फिर पाप को दोषी ठहराना.
What's the third use of the law?
और पाप व्यवस्था का तीसरा उद्देश्य क्या है, इस्तेमाल क्या है?
Guide our obedience.
हमें आज्ञाकारिता में दिशा निर्देशित करना.
What's the next question?
और उसके बाद फिर और प्रश्न क्या था? एक और प्रश्न क्या था?
The what? Sinner's relationship to the law.
पापी का व्यवस्था से क्या संबंध है?
He's under the law.
एक पापी व्यक्ति है, वो तो व्यवस्था के अधीन है.
He must obey it perfectly.
उसे उस व्यवस्था का संपूर्णता से पालन करना ही चाहिए.
And if he breaks one, he's guilty of them all.
अगर वो एक व्यवस्था को तोड़ता है, वो संपूर्ण व्यवस्था का दोषी है फिर.
What's the next question?
और उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था जो हमने देखा था?
What does it mean to be under the law?
व्यवस्था के के अधीन होने का मतलब क्या है?
It means to it has requirement of perfect obedience.
इसका ये मतलब है कि हम सिद्ध आज्ञाकारिता की मांग है.
And it pronounces a curse if you do not obey.
और अगर हम सिद्धता के साथ उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं होते तो हमारे पर शाप वो डालता है व्यवस्था.
So let me ask you a question.
तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
If you preach the gospel to men, should you sometimes often preach the law?
अगर आप लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करें तो क्या आपको कभी कभी व्यवस्था का प्रचार करना चाहिए उनके सामने?
Why?
क्यों?
Because God uses the law to reveal sin.
क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था का इस्तेमाल करता है हमारे पापों को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए.
Now that's not the only thing God uses to reveal sin.
केवल यही चीज नहीं है जो जिसका इस्तेमाल परमेश्वर करता है हमारे पापों को दर्शाने के लिए.
What else does God use to reveal sin?
और क्या चीज है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमारे पापों को
दर्शाने के लिए? He uses the law.
वो व्यवस्था का इस्तेमाल करता है.
What else does he use?
और किस चीज का इस्तेमाल करता है वो?
He uses the cross.
वो क्रूस का इस्तेमाल करता है हमारे पापों को दर्शाने के लिए.
What is the relationship of the cross and the law?
क्रूस का और व्यवस्था का क्या संबंध है?
On the cross, Jesus paid the penalty of the law.
क्रूस पर यीशु मसीह ने व्यवस्था के दंड को चुका दिया.
On the cross, Jesus suffered the curse of the law.
क्रूस पर यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप को सह लिया.
So you preach the law and you preach the gospel.
तो इसीलिए आप व्यवस्था का भी प्रचार करेंगे और सुसमाचार का भी प्रचार करेंगे.
God often uses these things to convict men of their sin.
और कभी-कभी अक्सर परमेश्वर इन चीजों का इस्तेमाल करता है लोगों को उनके पापों के प्रति चेतित चेताने के लिए.
And you must preach the law specifically and directly.
और आपको व्यवस्था को उनके सामने साफ तरीके से और सीधे तौर पर बात करना उनसे.
What's the next question?
Oh, उसके बाद कौन सा प्रश्न था?
The curse of the law.
व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था का श्राप क्या?
Matthew 25.
मत्ती उसका 25वां अध्याय.
I will separate the sheep and the goats.
मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा.
And I will say to the goats.
और फिर मैं बकरियों से कहूंगा.
What will he say?
क्या कहेगा वो बकरियों से?
Two things.
दो चीजें कहेगा. दो चीजें कहेगा बकरियों से. क्या कहेगा बकरियों से?
Depart from me.
दूर हट जाओ मेरे सामने से.
Where?
कहाँ चले जाओ?
Into the everlasting fire.
नरक की अनंत काल की अग्नि की ओर.
What is the curse of the law?
व्यवस्था का श्राप क्या है?
What did Jesus call the goats?
यीशु मसीह ने बकरियों को क्या कहा?
You cursed ones.
तुम श्रापित लोग.
What is the curse?
वो श्राप क्या है वो श्राप?
Two things.
दो चीजें.
Separation from God.
परमेश्वर से अलगाव.
And the reception of wrath.
और परमेश्वर के श्राप को क्रोध को पाना.
What did Jesus say on the cross?
यीशु मसीह ने क्या कहा क्रूस के ऊपर?
My God, why have you forsaken me?
मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया?
What was happening at that moment?
उस क्षण में क्या हो रहा था क्रूस के ऊपर?
God was saying to his own son.
परमेश्वर अपने स्वयं के पुत्र से कह रहा था.
You are the cursed one.
कि तुम तो श्रापित जन हो.
Depart from me.
मेरे से दूर हट जाओ.
And he was separated from his father.
और वो अपने पिता से थोड़ी देर के लिए अलग हो गया.
God poured out wrath upon him.
परमेश्वर ने अपने क्रोध को अपने पुत्र के ऊपर उंडेल दिया.
And he put the cup of God's wrath to his lips.
और उसने परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को उसके होठों से लगा दिया.
And he drank it to the last drop.
और यीशु मसीह ने उस क्रोध के कटोरे के में से आखिरी बूंद तक पी लिया.
And then he died.
और फिर उसकी मृत्यु हो गई.
Under the curse of God.
परमेश्वर के श्राप के अधीन.
You ever think about that?
क्या आप कभी इसके बारे में सोचते हैं?
It's one thing to understand it right here.
ये तो एक बात हो गई कि आप इसको अपने दिमाग में यहाँ पे समझ जाएं.
It's another thing to believe it right here.
लेकिन एक दूसरी बात हो गई कि आप इसको अपने हृदय में यहाँ पे समझ जाएं.
What's the next question?
उसके बाद कौन सा प्रश्न है?
व्यवस्था से मसीह का संबंध.
Relationship of law and Christ.
The relationship of Christ and the law.
मसीह का व्यवस्था से क्या संबंध है?
He was born under the law.
वो व्यवस्था के भीतर पैदा हुआ.
He obeyed its requirements.
उसने उसकी मांगों को पालन किया, माना.
He taught its truth.
उसने उसके सत्य को सिखाया.
He restored it to its right purpose.
और उसने उसको जो सही उद्देश्य था उसको वापस स्थापित किया.
And he suffered its curse.
और उसके श्राप को सह लिया, भोग लिया.
That's what it means when he said, "I fulfill the law."
उसका यही मतलब है जब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने व्यवस्था को पूरा किया.
It means at least those four things.
कम से कम ये चार बातें हैं इसका मतलब.
He said, "I didn't come to abolish the law, but to fulfill it."
यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आया हूँ.
What's the next question?
उसके बाद और क्या प्रश्न है?
What? We just answered that one.
मसीह ने व्यवस्था को कैसे पूरा किया, हमने अभी उत्तर दे दिया उसका. धन्यवाद भाई.
By his life and by his death.
उसने अपने जीवन के द्वारा और अपने मृत्यु के द्वारा व्यवस्था की मांग को पूरा कर दिया.
His active obedience, his passive obedience.
उसके सक्रिय आज्ञाकारिता और असक्रिय आज्ञाकारिता के द्वारा.
Do you remember those terms from last time?
आपको याद है पिछली बार हमने बात किया था सक्रिय और असक्रिय आज्ञाकारिता के बारे में?
What's the next question?
उसके बाद कौन सा प्रश्न है? The law and the gospel.
What is the relationship of law and the gospel?
सुसमाचार और व्यवस्था का क्या संबंध है?
The law leads to the gospel.
व्यवस्था सुसमाचार की ओर लेकर के जाता है हमको.
The law prophesied about the gospel.
सुसमाचार ने व्यवस्था ने सुसमाचार के बारे में भविष्यवाणी की.
The law prepares the way for the gospel.
व्यवस्था जो है सुसमाचार के लिए मार्ग को तैयार करता है.
The law shows man his sin.
व्यवस्था जो है लोगों को उनके पापों को दर्शाता है.
The law kills.
और व्यवस्था जो है लोगों को मारता है.
The gospel makes alive.
लेकिन सुसमाचार लोगों को जिलाता
है. The law condemns.
और जो व्यवस्था जो है लोगों को दंडित करता है.
The gospel justifies.
लेकिन व्यवस्था जो है लोगों को धर्मी.
They work together.
वे दोनों साथ में काम करते हैं.
The gospel is based upon the law.
जो सुसमाचार है वो व्यवस्था पर आधारित है.
What is the gospel?
क्या है सुसमाचार?
Christ's righteous life.
मसीह की धर्मी जीवन.
His sacrificial death.
उसका बलिदान का त्यागपूर्ण मृत्यु.
And his glorious resurrection.
और उसका महिमामय पुनरुत्थान.
That is the gospel.
ये है सुसमाचार.
And in his life he fulfilled the law's requirements.
और उसने अपने जीवन में व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया.
And his death he suffered the law's curse.
और अपनी मृत्यु में उसने व्यवस्था के श्राप को पूरा किया.
And God accepted his sacrifice.
और फिर परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया.
How do we know God accepted his sacrifice?
हमें कैसे मालूम कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया?
He raised him from the dead.
क्योंकि उसने उसको तीसरे दिन जिला भी उठाया.
1 Timothy 4.
पहला तिमोथियुस का चौथा अध्याय.
He was justified in the spirit.
वो अपनी मृत्यु में अपनी आत्मा में उसको धर्मी ठहरा दिया गया.
Jesus was declared to be righteous.
यीशु मसीह को धर्मी ठहरा दिया गया.
He paid the penalty.
उसने दंड की कीमत चुका दी.
Romans chapter 1.
रोमियों का पहला अध्याय.
God declared him with power to be the son of God.
परमेश्वर ने सामर्थ्य से बता दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है.
How?
कैसे?
By raising him from the dead.
उसको मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा.
Romans chapter 5.
रोमियों का पांचवा अध्याय.
Romans chapter 8.
रोमियों का आठवां अध्याय.
He was raised for our justification.
वो मृतकों में से हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए उठाया गया.
What's the next question?
उसके बाद अगला प्रश्न क्या है?
What's the relationship of the law and justification?
व्यवस्था और धर्मी ठहराए जाने के बीच में संबंध क्या है?
Justification is the fulfillment of the law.
धर्मी ठहराए दिए जाना व्यवस्था के परिपूर्णता है.
What's the next question?
उसके बाद कौन सा प्रश्न है?
Relationship of the law and what?
And sanctification. Yeah. व्यवस्था और पवित्रीकरण शुद्धिकरण के क्या संबंध है?
Here's our answer.
यह हमारा उत्तर है यहाँ पे. व्यवस्था उसका क्या है?
The law tells us where to go.
व्यवस्था हमको बताता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारा मार्ग दिखाता है.
It is the path for our feet.
वो हमारे मार्गों के लिए एक पथ है.
It is the guide in our heart.
हमारे हृदय में वो हमारा दिशा दिखाने वाला है.
It no longer condemns us, it directs us.
अब हमें दोषी नहीं ठहराता है लेकिन हमें दिशा दिखाता है.
Now when we talk about the law, I'm not just talking now about the Ten Commandments.
और जब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ तो मैं अब से केवल दस आज्ञाओं की बातें नहीं कर रहा हूँ.
We're talking about all the commandments in the New Covenant.
लेकिन हम नई आज्ञाओं नई वाचा के भीतर सारी आज्ञाओं के बारे में बात कर रहे हैं.
The seventh commandment says, "Thou shalt not commit adultery."
और सातवां आज्ञा कहता है कि तुम व्यभिचार नहीं करना.
But the New Covenant commandment says what?
लेकिन नए वाचा के भीतर आज्ञा क्या बताती है हमको?
Husbands, love your wives as Christ loved the church.
पतियों अपने पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया.
Live with her in an understanding way.
अपनी पत्नी के साथ एक समझदार तरीके से जियो.
Grant her honor as a fellow heir of the grace of life.
और अनुग्रह के जीवन के विरासत और भागी होने के अनुसार उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो.
The new covenant takes the Ten Commandments and expands them.
जो नई वाचा है वो पुराने दस आज्ञाओं को लेता है और उसको फैला देता बढ़ा देता है.
Jesus is the true Moses.
यीशु ही है असली वास्तविक मूसा.
He is the true lawgiver.
और वही है जो वास्तविक नियम देने वाला है.
He gave the right interpretation of the Ten Commandments.
दस आज्ञाओं का सही अनुवाद सही समझ यीशु मसीह ने हमको ला करके दिया.
Then he opened them up.
और उसने उनको खोल दिया हमारे सामने.
And he brought forth the deeper spiritual meaning.
और उन दस आज्ञाओं की जो गहरी आत्मिक अर्थ है वो हमारे सामने से लाकर के
And in the progression of revelation, the apostles added more commandments.
और प्रगतिशील प्रकाशन में प्रेरितों ने और भी कई बातें उसमें जोड़ दी हैं.
So when we talk about the law of God, we're talking about all the commandments of the New Testament.
तो जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम नए नियम में परमेश्वर की जो सारी आज्ञाएं हैं, हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं.
There were two commandments.
और दो आज्ञाएं.
Love God, love your neighbor.
परमेश्वर से प्रेम करो अपने पड़ोसी से.
Then there were 10 commandments.
और फिर उसके बाद 10 आज्ञाएं.
Then there are many commandments.
और उसके बाद बहुत सारी आज्ञाएं.
But now they're written on our heart.
लेकिन अब वे सारी आज्ञाएं हमारे हृदयों पे लिखी हुई हैं.
They're not over our head.
वो हमारे सर के ऊपर नहीं है.
They're under our feet.
लेकिन वो हमारे पैरों के नीचे.
What's the next question?
कौन सा अगला प्रश्न है?
मसीह का व्यवस्था से क्या संबंध?
Christ and law.
Christian.
The Christian.
मसीही. मसीही का विश्वासी को और व्यवस्था का. मसीही का विश्वासी को और व्यवस्था का क्या संबंध है? Is Christian under the law?
Is the Christian under the law?
क्या मसीही व्यवस्था के अधीन है?
What's the answer?
उत्तर क्या है?
No.
Nay.
For salvation.
उद्धार के लिए नहीं.
For justification.
धर्मी ठहराने के लिए नहीं.
He is not under the law.
वो व्यवस्था के अधीन नहीं है.
So when you read Paul saying we're free from the law.
तो इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं पौलुस ये कहते हुए कि हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं.
Which one does he mean?
तो किस व्यवस्था की बात कर रहा है वो? किस बात की बात कर रहा है वो?
This one.
दाएं हाथ आपके बाएं हाथ वाले आदमी की बात कर रहा हूँ.
When he says we're no longer under the law.
जब वो कहता है कि हम व्यवस्था के अधीन
नहीं हैं. We're free from the law.
हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं.
We've been separated from the law.
हम व्यवस्था से अलग कर दिए गए हैं.
The law no longer has any power over us.
और उसका हमारे पर अब कोई भी सामर्थ्य नहीं है.
Is he talking about this?
क्या वो इसकी बात कर रहा है? दूसरे आदमी की बात कर रहा है?
This? Or this?
इसकी बात करें कि उसकी बात करें? इसकी किसकी?
I said when he says we're no longer under the law.
और मैं कह रहा हूँ कि जब वो ये कहता है कि अब हम व्यवस्था के अधीन बिल्कुल नहीं हैं.
We're free from the law.
हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं.
We're finished with the law.
और हम व्यवस्था से हमारा काम तमाम हो गया.
We're separated from the law.
हम व्यवस्था से अलग कर दिए गए.
What's his meaning?
उसका मतलब क्या है?
This?
जिसका मतलब ये वाला मतलब?
Or this?
कि उधर वाला? इधर वाला कि उधर वाला? इधर वाला कि उधर वाला? This one.
They still don't understand.
No, I think they get it. I think they're just they're answering it.
You understand my question?
आप प्रश्न समझ रहे ना?
Sometimes Paul speaks very negatively against the law.
कभी कभी पौलुस बड़ी नकारात्मक रूप में व्यवस्था के विरोध में बात करता है.
It's a ministry of condemnation.
और वो ये एक दोषी ठहराए जाने की
सेवकाई है. It's a letter that kills.
ये एक ऐसा अक्षर है जो मारता है.
It cannot give life.
वो जीवन नहीं दे सकता है.
We are separated from the law.
हम व्यवस्था से अलग कर दिए गए.
We're free from the law.
हम व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिए.
We're no longer under the law.
अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं.
Is he talking about sanctification or justification?
क्या वो पवित्रीकरण के बारे में बात कर रहा है कि धर्मी ठहरा दिए यानी बारे बात कर रहा है?
किसके बारे में बात कर रहा है? धर्मी ठहरा दिया जाने के बारे में बात कर रहा है कि पवित्र करने के बारे में बात कर रहा है?
अच्छा, कितने लोग कहेंगे पवित्रीकरण के लिए, पवित्रीकरण की बात कर रहा है? कितने लोग धर्मी ठहरा दिया बात कर रहे हैं? कितने लोग कह रहे कोई बात नहीं कर रहा है?
Now listen carefully.
अच्छा, फिर से सुनिए दोबारा.
Let me say it again.
मैं फिर से बोलूंगा इसको.
Sometimes Paul speaks very negatively about the law.
कभी-कभी पौलुस बहुत ही नकारात्मक रूप में व्यवस्था के बारे में बात करता है.
It condemns us.
और वो कहता है कि व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है.
It kills us.
और व्यवस्था हमें मारती है.
It cannot justify us.
वो हमें धर्मी नहीं ठहरा सकती.
We are free now from the law.
अब हम लोग व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए.
It is no longer over our head.
अब व्यवस्था हमारे सर के ऊपर नहीं है.
He's talking about our justification.
जब वो ऐसी नकारात्मक बात कर रहा है तो वो हमारे पहले ही बात कर रहा है धर्मी ठहराए जाने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है.
So the Christian is free from the condemning power of the law.
एक मसीही जो है व्यवस्था के दोषी ठहरा दिए जाने के सामर्थ्य से स्वतंत्र है.
That law kills someone else in your place.
आपके बदले उस व्यवस्था ने किसी और को मार दिया बजाय हमको मारने के लिए. किसको मार दिया?
Is the Christian still obligated to obey the law?
क्या एक मसीही को अभी भी जरूरी है कि वो व्यवस्था का पालन करें?
For justification?
धर्मी ठहराए जाने के लिए? धर्मी ठहराए जाने के लिए एक मसीही को व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता है?
In sanctification.
लेकिन पवित्रीकरण है, पवित्रीकरण में मसीही को व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता है कि नहीं है?
Why?
क्यों जरूरी है?
Because in the new covenant it's written on the heart.
क्योंकि अब नई वाचा के अधीन व्यवस्था हमारे हृदय में लिख दी गई है.
It's no longer a heavy burden for him to carry.
अब वो हमारे लिए एक भारी बोझ नहीं है जिसको हमें उठा के चलना है.
He says, "Now I run the way of your commandments."
वो कहता है कि अब तो मैं आपके आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ता हूँ.
Because you enlarge my heart.
क्योंकि आपने मुझे बड़ा साहस दे दिया है.
You write it upon my heart.
आपने मेरे हृदय पे अपनी
व्यवस्था लिख दी है. You put it under my feet.
आपने अपनी व्यवस्था मेरे पैरों के नीचे लिख दी है.
I love your law.
अब तो मैं आपके व्यवस्था
पे प्रेम करता हूँ. It is my meditation all the day.
और पूरे दिन भर मैं उसे मनन करता रहता हूँ.
When a man is not a Christian, he doesn't love God's law.
और जब एक व्यक्ति मसीह नहीं होता है तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम नहीं करता.
When he believes, he has a new heart.
लेकिन जब वो विश्वास करता है तो उसको एक नया हृदय मिलता है.
Written on his heart.
और ये व्यवस्था उसके हृदय में लिख दी जाती
है. It is a gift of God.
ये तो परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए.
It shows him the way to go.
और फिर वो व्यवस्था हमको जाने का मार्ग दिखाता है.
Now tomorrow we'll talk about the evidence of legalism and the evidence of antinomianism.
और कल हम लोग बात करेंगे कानूनवाद या व्यवस्थावाद के प्रमाण और गैर व्यवस्थावाद के प्रमाण.
And this is a very important and practical question.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है.
So we must examine our own lives.
हमें अपने स्वयं के जीवनों को जांचना है.
We must examine our own preaching.
हमें स्वयं के प्रचारों को जांचना है.
We must examine our own churches.
हमें अपनी कलीसिया को भी जांचना है.
Are we moving to either extreme?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन दो चरम स्थितियों की ओर जा रहे हैं.
Are we walking in a holy balance?
या फिर हम एक पवित्र संतुलन में चल रहे हैं अपने जीवन को?
This is the very important question.
और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये.
Every generation and every country and every Christian must be able to answer these questions.
हर एक देश में, हर एक पीढ़ी में विश्वासियों को इस प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपके अंदर इसके बारे में?
Yes.
When David is writing about the law, so was it
because he is still under the old covenant.
Who? David?
David.
So when he is writing that thy words, Lord, is left for my future.
Yes.
So is it a future? Definitely he experienced that of the word of God. Yeah. Also is
Yes, when David.
Can I just tell the question? Yes. अंकल का ये प्रश्न है कि जब दाऊद ये बातों को लिख रहा है कि तेरा वचन मेरे लिए पांव के लिए दीपक और मां के लिए उजाला है, तो क्या वो भविष्यवाणी करके लिख रहा है, क्या वो भविष्य की बात कर रहा है? क्योंकि अभी तो अभी नई वाचा नहीं आई है ना, दाऊद तो पुराने वाचा के अंदर, तो क्या वो आगे की ओर देख करके लिख रहा है?
Now the salvation and people in the Old Testament, very important and interesting question.
पुराने नियम में लोगों का उद्धार बहुत ही रुचिकर बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे संबंधित.
How was Abraham saved?
आप क्या सोचते हैं कि इब्राहिम इब्राहिम का उद्धार कैसे हुआ था?
How was Moses saved?
मूसा कैसे बचाया गया?
How was David saved?
दाऊद कैसे बचाया गया?
How was Isaiah saved?
यशायाह कैसे बचाया गया?
Now listen carefully.
Paul
says this.
व्यवस्था ये कहता है.
There is an Israel within Israel.
पौलुस ये कहता है कि इज़राइल के भीतर एक और इज़राइल है.
There is a spiritual Israel within physical Israel.
वो कहता है कि शारीरिक इज़राइल के भीतर एक आत्मिक इज़राइल है.
Everyone that was physically born into Israel was born under the covenant.
सबके सब जो शारीरिक इज़राइल में पैदा हुए थे वो व्यवस्था के अधीन एक वाचा के अधीन पैदा हुआ.
But that doesn't mean they were saved.
इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग बचाए गए थे.
If they obeyed God's law, they would enjoy God's blessing.
अगर वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते तो फिर वो लोग परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करते पाते.
But there were some true Jews within Israel.
लेकिन इज़राइल के भीतर कुछ सच्चे यहूदी लोग थे.
And their circumcision, Paul said, was not of the skin, but it was of the heart.
लेकिन उनका जो खतना था वो शरीर का नहीं था, लेकिन उनका हृदय का खतना था.
Deuteronomy tells us, and Ezekiel tells us, and Jeremiah tells us, that God would circumcise their hearts. In the old covenant,
पुरानी वाचा के अंदर,
how were they saved?
कैसे उनका उद्धार होता था?
They were saved by the grace of God.
वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए.
They were not saved by their works.
वो अपने कार्यों के द्वारा नहीं बचाए गए.
They were saved by grace in believing in the promised coming Messiah.
वे कार्यों के द्वारा नहीं बचाए गए पुरानी वाचा में, लेकिन अनुग्रह के द्वारा बचाए गए आने वाले मसीहा जिसके प्रतिज्ञा की गई थी उस पर विश्वास करने के द्वारा.
Where did they hear about the Messiah?
कहां सुना था उन्हें इस आने वाले मसीहा के बारे में?
Where did they see the Messiah?
कहां देखा था उन्होंने आने वाले मसीहा को?
They saw the Messiah in types and shadows.
और उन्होंने आने वाले मसीहा को परछाइयों में और विभिन्न प्रकारों में देखा, प्रतीकों में देखा.
How did God reveal the Messiah to Adam?
कैसे परमेश्वर ने मसीहा आदम को मसीहा प्रदर्शित किया? उसके
बाय वर्ड एंड बाय डीड,
अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा.
व्हाट वाज द वर्ड?
शब्द क्या थे, वचन क्या थे?
जेनेसिस चैप्टर 3:15,
उत्पत्ति का तीसरा अध्याय उसका 15 पद.
आई विल पुट एनमिटी बिटवीन योर सीड एंड The serpent seed.
Okay, मैं तुम्हारे बीच के बीच में और तुम्हारे वंशज के बीच के बीच में और इसके सर्प के वंशज के बीच बीच में दुश्मनी डालूंगा.
Your heel, but you will bruise his head.
वो तुम इसकी एड़ी को डसेगा, लेकिन तुम उसके सर को कुचल दोगे.
God spoke a word of promise.
परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा के वचन को वहां पे बोला.
There is a seed of the woman that is coming.
इस महिला का बीज है जो आने वाला है.
And he would have victory over the serpent.
और वो बीज जो है सर्प सर्प के ऊपर विजय पाएगा.
How else did God preach the gospel to Adam?
और किस तरह से परमेश्वर ने आदम के सामने सुसमाचार का प्रचार किया था?
By deed.
कार्यों के द्वारा.
What did he do?
क्या किया उसने उसके लिए?
He killed an animal.
उसने उसके नंगे पर उठाने के लिए एक जानवर को मार दिया.
And he covered the guilt of his sin.
और उसके जो पापों का दोष था उसको ढांक दिया.
And what did Adam see?
और फिर आदम ने क्या देखा?
A substitute for my sin.
और उसने देखा कि मेरे पापों के बदले किसी और का प्रतिस्थापन.
How did God preach the gospel to Abraham?
परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने कैसे सुसमाचार का प्रचार?
By word and by deed.
वचनों के द्वारा और कार्यों के द्वारा.
What was the word?
और वचन क्या था?
I will multiply your seed.
मैं तुम्हारे बीज को बढ़ाऊंगा.
What was the deed?
कार्य क्या था उसके सामने?
He offered up his own son.
उसने अपना बेटा देने जा रहा था.
And what does the book of Hebrews say?
और इब्रानियों का पुस्तक क्या कहता है?
He received him back as a type.
और कि उसने उसको एक नमूने के रूप में वापस ले लिया.
What did Jesus say?
और यीशु मसीह ने क्या कहा?
Abraham saw my day and he was glad.
और यीशु मसीह ने कहा कि इब्राहिम ने मेरे दिन को देखा और वो प्रसन्न हुआ इस बात.
How did Abraham see the day of Christ?
इब्राहिम ने कैसे यीशु मसीह के दिन को देख लिया?
In the type of his own son Isaac.
उसने अपने पुत्र इसहाक के प्रतीक में ही यीशु मसीह को देखा.
And all through the Old Testament.
और संपूर्ण पुराने नियम में.
God preached the gospel.
परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार किया.
Word and by deed.
वचन के द्वारा और शब्दों कार्यों के द्वारा.
And what did he say to David?
और उसने क्या कहा दाऊद से?
I will sit someone upon your throne.
मैं किसी को तुम्हारे सिंहासन पे बैठाऊंगा.
And what does Peter say?
और पत्रस क्या कहता है?
Acts chapter 2.
पेतर का उसके दूसरे अध्याय.
David, seeing this, looked ahead and spoke of the resurrection of Christ.
और दाऊद ने यह देखते हुए आगे की ओर देखा और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात किया.
So when David believed in the promise of God and the coming Messiah,
तो जब दाऊद ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो कि आने वाले मसीहा में थी उस पर विश्वास किया.
God circumcised his heart.
तब परमेश्वर ने उसके हृदय का खतना किया.
And he put his law in his heart.
और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को उसके हृदय में डाल दिया.
And he put it under his feet.
और परमेश्वर ने उसके पैरों के नीचे डाल दिया.
So when David said, I love thy law.
और जब दाऊद कहता है मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं.
It is a lamp to my feet and a light to my path.
और मेरे मार्ग के लिए ज्योति और मेरे पैरों के लिए उजियाला है.
He was not talking just about the future.
तो वो केवल भविष्य के बारे में
बात कर रहा था. He was talking about his own experience.
लेकिन वो अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बात कर
रहा था. He was a true Jew.
वो एक सच्चा यहूदी था.
Circumcised in the heart.
उसका हृदय में खतना हुआ था.
Who didn't trust in his own good works.
जो अपने स्वयं के भले कार्यों पे भरोसा नहीं कर रहा था.
And when a true Jew brought his sacrifice to the altar in the Old Testament.
और जब एक सच्चा यहूदी वेदी पर अपने बलिदानों को लेकर के आता था पुराने नियम में.
What did he see?
तो वो क्या देखता था वहां पर?
He saw God's grace.
वो देखता था परमेश्वर के अनुग्रह को.
He saw a substitute.
वो देखता था अपनी जगह पे बदले में प्रतिस्थापन किसी और को.
And he didn't trust in his own offering of the sacrifice.
और जब वो अपना बलिदान को लेकर के आता था तो अपने बलिदान पे भरोसा नहीं करता था.
He looked beyond the sacrifice to the final sacrifice.
लेकिन वो अपने बलिदान से बढ़ करके आगे के आने वाले अंतिम बलिदान की ओर देखता था.
So how were men saved in the Old Testament?
तो फिर पुराने नियम में कैसे लोग बचाए गए हैं?
Just like you're saved.
जिस तरह से आप बचाए गए उसी तरह से.
By the grace of God.
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा.
Through Jesus Christ.
यीशु मसीह में होकर के.
Revealed in type and sacrifice and shadow and prophecy.
और भविष्यवाणियों में परिछाइयों में नमूनों में प्रतीकों में बलिदानों में उनमें प्रदर्शित हुआ यीशु मसीह.
And Adam.
आदम में.
Abraham,
Noah, Moses,
Musa,
David,
Daud,
the prophets,
Bhavishdakta,
they saw with the eye of faith.
उन लोग ने अपने विश्वास की आंखों से देखा.
Through the type,
प्रतीकों में से होकर के.
The promised one that was coming.
ये जो प्रतिज्ञा किया हुआ जन जो आने वाला था.
And when they believed, God circumcised their heart.
और जब उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर ने उनके हृदय को खतना किया. अपने व्यवस्था को उनके हृदय में डाल दिया.
Not all Jews were truly saved.
सारे यहूदी लोग वास्तविक रीति से बचाए नहीं गए थे.
Only those that looked beyond the sacrifice to the promised one.
केवल वही यहूदी लोग जिन्होंने बलिदानों से आगे बढ़ करके भविष्य में आने वाले प्रतिज्ञा की जन पर विश्वास
किया. So David was speaking of his own experience.
दाऊद अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बात कर रहा था.
And he was also speaking of the one to come.
और फिर वो एक आने वाले जन के बारे में बात कर रहा था.
Any other question?
कोई और प्रश्न? नहीं 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 उसकी बात नहीं कह रहे. नहीं 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 वो ये नहीं कह रहे. वो ये नहीं कह रहे.
If you have more questions, we will answer them, try to answer them tomorrow.
अगर आपके पास और प्रश्न है तो हम बाद में बात करेंगे. हम बाद में बात करेंगे आपसे. लेकिन उसका मतलब वो नहीं कह रहे थे. वो ये कह रहे हैं कि नए नियम में आकर के यीशु मसीह ने उस आज्ञा को लेकर और बढ़ा दी। तो पुराने नियम में खाली इतना है कि तुम व्यभिचार मत करो, लेकिन व्यभिचार से उससे बढ़कर के भी कह रहे ना से व्यभिचार नहीं करो, लेकिन अपनी पत्नी से भी प्यार करो और चिंता करो उसकी। ठीक है, केवल व्यभिचार ना करना ही काफी नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी से प्रेम करना, वो ये कह रहे हैं। बात समझ नहीं समझे? नए नियम में आकर के आज्ञाएं और बढ़ गई हैं, उनकी उनका वास्तविक मतलब क्या है उसको इस्तेमाल। खाली व्यभिचार ना करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान लोग जो व्यभिचार नहीं करते हैं, लेकिन वो नए नियम में आकर के यीशु मसीह कह रहे हैं सिर्फ व्यभिचार भी मत करो, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी है उससे और अधिक प्रेम करो, उसकी देखभाल करो। सब समझेंगे, हम बाद में और बात करेंगे। जो आप कह रहे हैं उसका वो बिल्कुल नहीं है।
Now listen carefully.
ध्यान से इस बात को।
In the old covenant,
पुरानी वाचा में,
there were physical blessings based upon obedience.
वहाँ पे शारीरिक आशीषें थी, आज्ञाकारिता पे निर्भर थी।
If Israel obeyed the covenant, they would enjoy physical blessings.
अगर इज़राइल वाचा का पालन करेगा तो उसको शारीरिक आशीषें मिलेंगी।
They would remain in the land.
वो लोग अपने जगह में बने रहेंगे।
They would have the presence of God in the temple.
उनके मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी।
And they would enjoy many physical blessings.
और फिर वो लोग बहुत सारी आशीषों को, शारीरिक आशीष को आनंद उठाएंगे।
But that was not spiritual salvation.
लेकिन वो सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं था।
A person could be in the old covenant and enjoy physical blessings, but not be truly saved.
एक व्यक्ति पुराने वाचा में होकर के शारीरिक आशीषों को तो आपको आनंद उठा सकता है, लेकिन फिर भी वो आत्मिक तौर से हो सकता ना बचा हो।
Paul says there is an Israel within Israel.
पौलुस यहाँ तक कहता है कि इज़राइल के भीतर एक और इज़राइल है।
Some are circumcised of the flesh, the others are circumcised in the heart.
कुछ लोग शरीर में का खतना हुआ है और कुछ लोगों का तो हृदय में खतना हुआ है।
When some brought their offering, they just did it in order to have physical blessings.
कुछ लोग जो परमेश्वर के पास आते थे अपना बलिदान लेकर के, वो लोग इसलिए आते थे ताकि उनको शारीरिक आशीषें मिल जाए।
But when others brought the sacrifice,
लेकिन कुछ लोग थे जो अपने बलिदान को लेकर के आते थे,
they offered it up to God,
वे परमेश्वर को देते थे,
and they saw through the sacrifice,
और उन्होंने इस बलिदान में होकर के देखा,
to the promised one,
कि एक आने वाला मसीहा,
they saw the mercy of God,
उन्होंने परमेश्वर के दया को देखा,
and the grace of God,
और परमेश्वर के अनुग्रह को देखा,
and when they laid their hands on that sacrifice,
और जब उन्होंने अपने हाथ को उस बलिदान के ऊपर डाल दिया,
and they confessed their sins,
और उन्होंने अपने पापों को मान लिया,
and that goat carried away their sins to the wilderness.
और जब वो बकरी उनके पापों को जंगल की ओर ले गई,
they looked beyond the goat and saw the promised one.
वो बकरी से बढ़ करके उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए जन की ओर देखा.
And they hoped and trusted in God.
और वो परमेश्वर पे आशा की और विश्वास किया उन्होंने.
Because God had opened their eyes.
क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखें खोल दी.
He circumcised their heart.
उनके हृदयों को खतना कर दिया था.
He put a new spirit within them.
उनके भीतर एक नई आत्मा डाल दी.
And He wrote the law on their heart.
और उनके हृदय में एक आज्ञा अपनी अपना व्यवस्था लिखी थी।
The ordinary Jew,
एक आम यहूदी।
Now bless me, Lord,
मुझे आशीष दो प्रभु।
The true Jew,
और जो सच्चा यहूदी था।
Thank you, Lord,
धन्यवाद प्रभु।
For your mercy and for your grace.
आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए।
And I see in this sacrifice your forgiveness through your promised one.
और इस बलिदान में मैं देखता हूँ आपका आपका प्रतिज्ञा किया हुआ जन इस बलिदान में होकर गए।
Every generation is only one way of salvation, that's through Christ.
हर एक पीढ़ियों में उद्धार का एक ही मार्ग, एक ही तरीका है, और वो है यीशु मसीह।
Either revealed in promise or prophecy or revealed in person.
चाहे वो व्यक्ति में होकर के लोगों के सामने प्रकाशित किया गया हो, चाहे भविष्यवाणियां और प्रतिज्ञा में होकर के लोगों के सामने प्रकाशित किया गया हो।
But if you're a true child of God,
और अगर आप परमेश्वर के सच्चे संतान हैं,
you are no longer under the law,
तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं।
You're under grace.
और अब आप अनुग्रह के अधीन हैं।
And the law is on your heart.
और व्यवस्था आपके हृदय पे लिखा हुआ है।
And it's under your feet.
और वो आपके पैरों के नीचे है।
God has not left us as orphans.
परमेश्वर ने हमको अनाथों के रूप में नहीं छोड़ दिया.
He put the Spirit within.
उसने अपनी आत्मा हमारे भीतर डाली.
And He shows us very clearly the way to go.
और वह हमें बड़ी स्पष्टता के साथ जाने का मार्ग दिखाता है.
So the Christian should obey and follow the law of God.
तो एक मसीही को परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए.
Not for his salvation.
अपने उद्धार के लिए नहीं.
But for his sanctification.
लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए.
Well, let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.